ओम शांति। आज की सवेरे की मुरली यही थी क्या? जाना है, क्या इरादा है? पूछ रहे थे बाबा दो चार दिन पहले, क्या विचार है बच्चे, चलना है? क्योंकि बहुत दिन हो गए ना, भूल गए घर को। तो घर जाने की खुशी तो बहुत होती है। आप सब जब मधुबन आते हैं तो इस घर आने की फीलिंग, और जब यहाँ से वापिस जा रहे तो वहां जाने की फीलिंग, ये बड़ी नेचुरल है ना दुनिया में। अभी घर जाने का समय आ गया है। ज्ञान से तो हम सबको पता है, पर इसकी फीलिंग होना इम्पोर्टेंट बात है, तैयारी करना इम्पोर्टेंट बात है। बत्ती वालों को मधुबन आना था, तैयारी की थी या नहीं? सेवादारियों ने तैयारी की थी आने के कुछ, या सीधे आ गए उड़ के? की थी तो घर जाने की भी तैयारी तो करनी पड़ेगी। कैसे घर जाएंगे जो रोज आता है मुरली में? आज भी था और रोज आता है। पावन बनकर, सतो प्रधान बनकर, कोई भी तमो प्रधान घर वापिस नहीं जा सकते। जैसे आए थे वैसे ही जाना है, अशरीरी होकर। तो पहले तो अपने से सबको पूछना है, आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। पहले तो सबको पूछना है, क्या हमें पता है कि घर जाना है? मोटा प्रश्न है पर उत्तर मोटा नहीं है। बोलो, पता है? सोच लो अच्छी तरह। नहीं पता है बहुतों को, बहुतों को नहीं पता है। ये रोज सुनते हुए भी के घर जाते हैं, जाना है, ये बात अंदर नहीं जा रही है। कम से कम 95% ब्राह्मणों के अंदर नहीं जा रही है ये बात। अब बहने पहले इधर हो जाओ, अब दोनों यहाँ जाओ तार के इधर, और इधर हो जाओ, क्योंकि लेट आने वाली माताएं उन्हें भी मौका तो देना पड़ेगा ना। ये तो नहीं कहेंगे कि बाहर रहो, भाइयों की साइड में बैठ सकते हैं, पीछे भाई कम हैं। पूछें आप अपने से, मुझे ये शरीर छोड़कर और क्या क्या छोड़कर? चिंतन करेंगे आज। पहले माताओं से पूछते हैं, और क्या क्या छोड़कर? बोलो जरा। अगर आपको पता है कि जाना है तो डरो नहीं, खुले दिल से बोलो, क्या क्या छोड़कर? संबंधों की बात जरा विस्तार से कर दो, क्या क्या छोड़कर? भाई बताओ, माताओं से नहीं बोला जा रहा है, भाई बताओ। घर और परिवार को छोड़कर, फिर बताओ परिवार में कौन कौन? माता पिता को छोड़ना है, किसको छोड़ना है? बच्चों को छोड़ना है। कि कैसा लगता है माताओं को? हाय बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, हे बाबा ये काम तो बड़ा खराब है, इन्हें ना छोड़ो। तो साथ ले जाएगा, छोड़ेगा थोड़ा ही, उन्हें भी साथ ले जाएगा। जो धन कमाया है, जो मकान बनाया है, उसमें जो साज सजाए हैं, वो सब छोड़कर जाना है। देख लो अपने अपने घरों को, यहीं से सब कुछ छोड़कर जाना होगा। बाबा के शब्द, तुम जाना चाहो? बोलो आगे, आपको बोलो, मैं तो लेकर जाऊंगा, यहाँ किसी की नहीं चलेगी, क्योंकि खेल ही पूरा हो रहा है ना, खेल पूरा हो गया है। 5000 साल का खेल जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पहुंच रहा है, जाना ही है, तब नए चक्र में पुनः आएंगे। तो सब कुछ छोड़कर, बिल्कुल खाली होकर, अब दूसरी साइड इसके, इधर से सब कुछ खाली करके और बाबा की ओर से सब कुछ भर कर, क्योंकि जब हम आए थे तो खाली नहीं आए थे, वो दुनिया वाले खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ आएंगे आए थे हम नहीं। ये कहावत हमारे लिए नहीं है, ठीक बात है ना, हमारे लिए नहीं है। हाँ है नहीं, हम तो सब कुछ लेकर जाएंगे, एक्सचेंज तो अब कर रहे हैं, हम सब कुछ लेकर जाएंगे। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी, जो कुछ हम छोड़ के जाएंगे उसको जिसने एक्सचेंज कर दिया, एक्सचेंज का अर्थ है बाबा को अर्पित कर दिया, तो उसका कुछ भी विनाश नहीं होगा। विनाश नहीं होगा इसका अर्थ ये नहीं आपके ईंटों के मकान टूटेंगे नहीं, वो तो सब टूटेंगे। वो तो आप कोई अगर सोने का अच्छा मकान मिल जाए तो उसको लात मारेंगे, छोड़ो कौन इसमें जाएगा, तो बेकार है, इतना अच्छा माल मिल रहा है। लेकिन मन से जिसने परिवर्तन कर दिया, ये मेरा नहीं है तेरा है, तो उसका सब कुछ बाबा के अविनाशी बैंक में जमा हो गया और उसको बहुत मिलेगा। एक मुरली चली थी कुछ समय पहले ही, बाबा जब आते थे एक दो साल पहले ही, बाबा ने ये अलौकिक अविनाशी बैंक खोला है। ये बैंक केवल एक बार ही खुलता है, अब समय है इसमें सब कुछ जमा करने का। कुछ लोग जमा करते हैं, कुछ नहीं करते, ये सबकी अपनी अपनी विवेक शक्ति, भावनाएं, किसने कितना पहचाना है इन चीजों को, उस पे निर्भर करता है। कोई तो सोचते बहनों को देते हैं, ये बहनें तो पता नहीं क्या क्या कर लेती हैं, दिया हुआ पूरा हो गया, खाली हो गया जो दिया, ये संकल्प करते हैं, क्योंकि किन को दिया उन्होंने, बहनों को दिया, बाबा को नहीं दिया, तो वो पहुंचा ही नहीं ऊपर। कई तो यही देखते रहते हैं, अरे बहनों ने तो अच्छे सोफे खरीद लिए हैं, ये तो खराब है, हमारे पैसे का दुरुपयोग कर दिया, हम नहीं देंगे यहाँ, तो पूरा हो गया उनका। और जो सोचते हैं हम तो बाबा को देते हैं दिया, फिर हमारा नहीं है वो, हमारा अधिकार नहीं है उस पे, वो दिया दिया हुआ पूरा हुआ, हमारा जमा हो गया, जो देकर भूल जाएं उनका पूरा जमा होता है। और जो देकर गिनती करते रहें, 10 साल से मैं ब्राह्मण हूं, इतना दे चुका हूं, सोचता कोई ऐसा, या मैं ही कह रहा हूं, भाई लोग बताओ, सोचते हैं, सोचते हैं कई लोग, 10 साल में मैंने बाबा के यज्ञ में इतना दिया, ये मकान बनवा कर दे दिया है, ये काम किया, उनका बहुत सारा कैंसिल हो जाता है। तो बड़ी गुह्य गति है ये कर्मों की। यहाँ हमारे कर्म ईश्वरीय कर्म है, प्रतियुग में भी नहीं ये कर्म, ये कलयुग में भी नहीं, ये कर्म दिव्य कर्म भी बन जाते हैं। बहुत बड़ा ये शब्द है दिव्य कर्म, अगर कोई ये सीख ले तो उसका थोड़ा दिया हुआ भी बहुत बड़ी प्रारब्ध देने वाला बन जाता है। हाँ, जिनके हाथ में दे रहे हैं वो तो साकार में ही हैं, ये उनका भी कर्तव्य है कि वो उसका सदुपयोग करें। एक बार अव्यक्त बाबा ने मधुबन वालों से पूछा, ये हॉल भी नहीं बना था तब तक, बिल्कुल बाबा कहीं और आए थे, ऊपर ट्रेनिंग सेक्शन है ना, शांति स्तंभ के ऊपर के कमरे, इस साइड में एक बड़ा सा रूम, उसमें आए थे बाबा। पूछा मधुबन वालों से, किसी ने कहा कि बाबा हमारा धन तो जमा नहीं होता, और वो भाई संभालता था गाय बाबा की, बाबा के समय गौशाला थी, जहां नीचे किचन है ना, ये गौशाला थी यहाँ। तो बाबा ने उत्तर दिया, देखो तुम गायों को संभालते हो ना, मान लो उनका दूध निकाला, वो ठीक ठाक तुमने संभाला तो उसका कुछ हिस्सा जमा हो गया तुम्हारा, और मान लो कहीं 100 रुपए खर्च होने थे, तुमने वो काम 90 रुपए में कर लिया, करा दिया, तो 10 रुपए तुम्हारे जमा हो गए। कहीं तुमने यज्ञ में बचत कर दी, सबके कार्य हैं यज्ञ में, अब उसमें बहुत खर्च भी किया जा सकता है और उसको कम खर्च में भी किया जा सकता है, सब जानते हैं, घरों में करते हैं, तो जो बचत कर ले वो तुम्हारा जमा हो गया। तो ये कर्मों की, अलौकिक कर्मों की गति भी बहुत ही सुंदर है। तो पीछे आने वाले भी सुन लें, आज का गीत था अब घर जाना है, हमें जाना है, लेकिन जाने से पहले इस जाने के लिए बाबा ने 2 बड़ी बातें और सुनाई हैं। एक आ चुकी है मुरली में, शायद 15 दिन पहले ही, कल संडे है ना, 15 दिन पहले ही, तुम्हें केवल जाना नहीं है, सबको साथ भी ले जाना है। ये और गुहे बात हो गई, जितने भी हम में से इष्ट देव देवी हैं, उनके पीछे एक बड़ी बड़ी संख्या है जो उनके भक्त रहे हैं भक्ति में, और जो इस समय भी उनसे जुड़े रहते हैं सूक्ष्म रूप से, ये गाइड बनेंगे उन सबको ले जाने के। ये रहस्य होगा, कोई अकेले जाएंगे पीछे पीछे, और हम में से कुछ आत्माएं होंगे जो दूसरों को लेकर भी जाएंगी। कितने होंगे वो, कितने होंगे, नहीं लाखों नहीं होंगे, वो होंगे 108 रतन, जिनके पीछे एक एक के पीछे लाखों होंगे, अब वो सब उनके पीछे चलेंगे। दूसरी गुह्य बात कही जो और गुह्य है, किसके लिए है वो सब सोच लें अपने को सामने रखकर। जब तक तुमने ब्राह्मण पन के कर्तव्य पूरे नहीं किए, तुम घर नहीं जा सकेंगे। ये बहुत गहरी बात। अब ब्राह्मण पन के कर्तव्य क्या हैं? आप ये कर्तव्य सुन के सोच लेना, हम ये कर्तव्य पूरे करेंगे। ऊपर भी बैठ सकती हैं बहने, ऊपर बैठ जाओ। हम ये कर्तव्य पूरे करेंगे, क्या क्या कर्तव्य करने होंगे हमें विनाश काल में? घर जाने से पहले सृष्टि पर सभी को अपने हिसाब किताब चुकतू करने होंगे, ये सृष्टि ही धर्मराजपुरी भी बन जाएगी। अब जब सब अपने हिसाब किताब चुकतू कर रहे होंगे तो हमें क्या करना होगा, सोचो। अब जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं वही केवल इसका उत्तर दे सकेंगे। बोलो पहले बहनों से, योग का दान। और बोलो, अब देख लें विनाश काल में योग किस किस का लगेगा, विनाश काल में योग किस किस का लगेगा? सबका नहीं लगेगा, विनाश के चक्रव्यूह में बहुत लोग फंस जाएंगे। जो ढीले पुरुषार्थी हैं ब्राह्मणों में वो सब अटक जाएंगे। मैं एक खराब सी बात सुनाता हूं आपको, खराब है, सुन के सभी को भारी तो लगता है, पर ये सब हो रहा है। कल कोई आए मेरे से मिलने, भाई हमारे परिवार में बड़ी थी बहन, बड़ी, काफी बड़ी, 40 साल से 45 साल, कहा मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई, और एक दूसरे थे अंकिल छोटे, उनसे बाप से, उनकी भी मृत्यु हो गई। हमारे घर में बहुत ही घबराहट का माहौल हो गया है, मेरी स्थिति पूरी बिगड़ गई है। अब देखो ये स्थिति, मैंने कहा माँ बाप की क्या आयु थी, 70 साल के आसपास, ठीक ठाक गए, आराम से चले गए। तो मैंने उसे कहा एक तो ये अच्छी बात भी है कि आपके माँ बाप ने सहज शरीर छोड़ा, सहज शरीर छोड़ा। सहज शरीर छोड़ना किस चीज की निशानी है? पुण्य कर्मों की। दूसरा जाना यानी देह छोड़ना, ये सबके लिए एक निश्चित समय पर होगा ही। बाबा ने कह दिया इसको मैं भी टाल नहीं सकता। तो जाने का समय आ गया और सहज गए तो भी हाल बिगड़ गया। मैं सोचता था, मैंने उसको नहीं कहा, उसको तो जो कहना होता है वही कहा, लेकिन मैंने सोचा कि जब सारा संसार जाएगा लोगों का क्या हाल होगा। ये रोज आते हैं मेरे पास, रोज आते रहते हैं, किसी की मृत्यु हो गई तो हाल बिगड़ गया। लेकिन ऐसी माताएं भी हैं जिनके पति गए और उन्होंने अपने को और अपने परिवार को बहुत अच्छा संभाल लिया। इधर हो जाओ भाई लोग, एक लाइन आगे से बनाओ, बिल्कुल और हो जाओ, पूरे खिसक जाओ, क्योंकि और भी लेट वाले आएंगे अभी। कई लोग तो आवाज सुन के ही आते हैं ना, कौन क्लास करा रहे हैं, पीछे सोचते हैं चले या ना चले या इधर ही सुन लें। तो हम सभी को विनाश काल में अपने ब्राह्मण पन के कर्तव्यों को पूर्ण करना है। मैं कल का एक अनुभव सुनाऊं। एक युगल आए, काफी बड़े थे, उनकी भी आयु 60 साल से ज्यादा। कहा मेरी माँ है 85 साल की, बीमार है, शरीर नहीं छोड़ रही है, वो भी छोड़ना चाहती है और हम भी चाहते हैं सुखी हो जाए, बेचारी कष्ट पा रही है, क्या करें। अब सोचो विनाश काल में हम सबको ये एक बड़ा काम करना होगा। बहुत आत्माएं शरीरों में उलझ जाएंगी, वो भी चाहेंगी छूट जाएं और परिवार वाले भी चाहेंगे ये मुक्त हो जाएं। हमें अपने वाइब्रेशंस देकर उन्हें मुक्त करना होगा। हमें पता भी नहीं होगा कौन है, लेकिन हमारे वाइब्रेशंस ये काम करेंगे। लेकिन किन के वाइब्रेशंस ये काम करेंगे? जो मास्टर मुक्ति दाता बन गए होंगे, जो स्वयं को मुक्त कर चुके होंगे। मास्टर मुक्ति दाता वे बनेंगे जो स्वयं को मुक्त कर चुके होंगे। किस किस से सोच लो, फाइनल मुक्ति से पहले। लोग तो कह देते हैं कोई सन्यासी मरा मुक्त हुआ, ब्रह्मलीन हो गया। अरे यही मुक्त नहीं था, गुस्सा करता था तो मरने के बाद मुक्त कैसे हो जाएगा भाई? यही धंधे में चेले चपटों में फंसा हुआ था, यही मुक्त नहीं था, मरने के बाद मुक्त हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं। जो यहाँ मुक्त नहीं, यहाँ कर्मातीत हो, यहाँ बंधनों से मुक्त हो, मनोविकारों से मुक्त हो, कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त हो, वो फाइनल में मुक्त होंगे। तो जिन्होंने अपने को यहाँ ऐसा मुक्त कर लिया है वो दूसरों को मुक्ति का वरदान दे सकेंगे। और क्या क्या ब्राह्मणपन के कर्तव्य करने पड़ेंगे बोलो, और बोलो। संदेश तो अब टीवी से सबको फटाफट मिल जाएगा। बोलो, पीछे वाले बोल सकते हैं, जब तक तुमने ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूरे नहीं किए तुम घर नहीं जा सकोगे। ये बात सबके लिए तो नहीं है, कहीं तो किसी किसी को देखकर बाबा दें, लेकिन वो कौन से कर्तव्य हैं? देखो विनाश काल में बहुत लोग रात को सोएंगे नहीं, नहीं सोएंगे तो किसे याद करेंगे? हमको भी और शिव बाबा को भी। और शिव बाबा कहेगा भी ये तुम्हारे भक्त हैं, इन्हें सुलाओ, तुम्हारे भक्त हैं, तुम्हारी वंशावली है, तुम इनके पूर्वजों, सुलाओ इन्हें, हम वाइब्रेशंस देख के उन्हें सुख की नींद करा दें। बहुत बड़ी आवश्यकता होगी इस समय की, मेडिकल साइंस सारी फेल हो जाएगी, अब भी फेल हो रही है, जो डॉक्टरों के चक्कर में ज्यादा रह जाते हैं उनको पता है वो कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे पहले कहते थे ना पुलिस और कोर्ट का, कोर्ट कचहरी का चक्कर बड़ा बुरा है, ये डॉक्टरों का चक्कर भी बड़ा बुरा है। एक बार उनके चक्रव्यूह में चले गए तो डॉक्टर सोचता है इसको यहां से जाने नहीं देना है, क्योंकि पैसा कमाना है ना। आजकल मेडिकल साइंस भी व्यापार हो गया, कॉमर्शियल, इसलिए गड़बड़ हो गई है, जाने नहीं देना है इसको। मुझे हंसी आई, मैं रायपुर था ना, परसों ही आया तो मुझे अपना कुछ चेकअप कराना था, तो बहन जी ने कहा एक बहुत अच्छा है, बस 3,000 रूपये लेता है, सारा चेकअप करके घर में ही आएगा और रिपोर्ट भेज देगा। एक चीज मेरी आई 1584 जो यहाँ 330 थी। मैंने कहा गलत रिपोर्ट है, मैं मानता ही नहीं। B12 2000। मैंने कहा इसमें तो मर जाएंगे दोनों में लोग, है ही नहीं, गलत रिपोर्ट है, बिल्कुल मैं नहीं स्वीकार करता। दूसरों को बुलाओ, दूसरों से कराई अगले दिन। B12 150, वो ट्राइग्लिसराइड था, वो 800 आ गया। मैंने कहा ये भी गलत है। तो देखो कितनी गड़बड़ होती है, नहीं तो क्या करेंगे डॉक्टर, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति पहुंच जाए, कोई माता, जल्दी आईसीयू में भर्ती कर दो, नहीं तो एक हफ्ते में मर जाएगी ये तो। अब बेचारे उनकी माँ है, क्या करेंगे भाई, चलो कर्ज लेके भी माँ का इलाज तो कराना है, करा दो, और उसको फाइनली विदाई दे के ही पैसा कमा के फिर आपको मुक्त करेंगे। तो हम सबको ये बहुत बड़ा काम करना होगा। योग की भिन्न भिन्न विधि सभी सीख लें। मेरी बात डॉक्टरों को तो बुरी लगेगी जो सुनेंगे, कहेंगे हमारे विरुद्ध कब से हो गया ये, विरोध की बात नहीं, पर ये हमारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं चेक करने वाले वो गड़बड़ बहुत कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे हॉस्पिटल में अब से 20 साल पहले वही चीज मेरी 1480 आई थी। डॉक्टर भाग दौड़ कर रहे, जल्दी भर्ती करो, हार्ट में गड़बड़ हो रही होगी, ये करो। मेरा तो सब कुछ अच्छा, और तब से मैं अब तक 10 बार करा चुका हूँ, वो ज्यादा ही आती है, और मेरा हार्ट फर्स्ट क्लास है। मैं कहा तुम्हारी मशीन ही खराब है। तो हमें वाइब्रेशंस देकर, क्योंकि संसार में क्या बढ़ेगा, बहुत मानसिक रोग, इनका कोई इलाज दुनिया में नहीं होगा। हमें वाइब्रेशंस देखकर अपनों को भी और दूसरों को भी मानसिक रोगों से राहत दिलानी पड़ेगी। तो बड़े बड़े काम हैं, मुक्ति का वरदान भी देना होगा। देखो बिल्डिंग गिर जाती हैं, बहुत लोग जिंदे दब जाते हैं, फंस जाते हैं, बेचारे जिंदे रहते हैं। अब एक दिन भी 24 घंटे भी जिंदा रहना अंधेरी गुफा में, जब प्यास लग रही है, पानी नहीं है, खून बह रहा है, दवाई नहीं है, सिर फूट गया है, कोई पूछने वाला नहीं है, कैसी हाल होती है उस मनुष्य की, एक एक क्षण धर्मराजपुरी लगता है। तो ऐसे में हमें उन्हें देह से मुक्त भी करना होगा। तो हम याद रखेंगे ब्राह्मण पन के कर्तव्य करने के लिए हमें अपने को तैयार करना है। ठीक है, पसंद है? अब हमें जाना है तो बाबा से सब कुछ लेना है, और यही राज है। जो बाबा से सब कुछ लेंगे उन्हें यहाँ सब कुछ छोड़ना छोटी सी चीज लगेगी, जैसे 1 करोड़ रुपए पाकर 1 रुपया छोड़ रहे हो, कैसा लगेगा? किसी को 1 करोड़ दे दिया जाए और 1 रुपया मांगा जाए कि ये दे दो, इसका वो साइन कराना तुम्हें 1 रुपए की टिकट लगा के, कैसा लगेगा? कुछ छोड़ ही नहीं रहे। तो बाबा से जिन्होंने सब कुछ ले लिया होगा उन्हें सब कुछ छोड़ना सरल लगेगा। नहीं तो बहुत लोग क्या कहेंगे, बाबा के बच्चे कहते हैं अभी हमने तो बाबा के लिए बहुत कुछ किया था, बाबा ने हमारा मकान भी नहीं बचाया। वो भूल जाते हैं कि ये मकान स्वर्ग में नहीं रहेगा, वहां इन मकानों की कीमत नहीं होगी। बाबा ने तो हमारे बच्चे को नहीं बचाया, उसको कैंसर हो गया, हमने तो बाबा पर कितना विश्वास रखा था, इसमें भी बाबा नहीं कुछ करेगा, क्योंकि ये हरेक के कर्मों की अपनी अपनी कहानी है, इसमें भगवान की कहानी नहीं है, ये कर्मों की अपनी कहानी है। लेकिन जो अपनी स्थिति को अच्छा रखेंगे, जो तब भी बाबा में संशय नहीं लाएंगे, कर्मों की गति को स्मृति में रखेंगे, उन्हें मदद बहुत मिलेगी, ये कभी नहीं भूलना है। और बाबा ने ये भी कह दिया, सुनाओ बाहर जाके, सुनाओ बार बार आएगा, बाबा ने ये भी कह दिया है, अब हूं मैं तुम्हारा साथी और तब हो जाऊंगा साक्षी। सोचें कि पेपर आ गए हैं और टीचर सब कुछ बता के लिखा दे, होगा ऐसा? किस किस को लिखाएगा? नियम नहीं है कि परीक्षा के समय टीचर मदद करे, जब वो मदद दे रहा है तब हम मदद ले लें, अभी भी समय है उसकी मदद प्राप्त करने का, तो हम उसकी मदद के अधिकारी बन जाएं, जो उसके कार्यों में मदद करेंगे उसको, बोलो आगे, सुना नहीं ध्यान से, जो बाबा के कार्यों में बहुत मदद करेंगे उनको बाबा की बहुत मदद मिलेगी, विनाश में भी मिलेगी। लेकिन मनुष्य की क्या है स्थिति कि वो एक्सपेक्ट ज्यादा करता है, बस कुछ न हो मुझे और मेरे परिवार को, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाबा मदद बहुत करता है, लेकिन उसका मदद करने का तरीका उसका ही है ना, उसको कर्मों का भी सबका हिसाब किताब देखना है, वो भी चुक तू कराना है और मदद भी करनी है, तो एक सुंदर बैलेंस के साथ वो अपने बच्चों को मदद करता है। ये नहीं तुमने जितने चाहे पाप किए हो सब माफ, ये तो नहीं कर सकता ना वो, क्योंकि सभी उसके बच्चे हैं। तो हमें बाबा से सब कुछ लेकर जाना, क्या क्या लेना है? सर्व खजाने, पहले ज्ञान, ज्ञान धन। बाबा ने एक बहुत अच्छी मुरली चलाई है, आ जाएगी दो चार दिन में। मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम्हें भी ज्ञान सागर बना देता हूं। और राज की बात ये कही, जो पास विद ऑनर होते हैं, पास विद ऑनर समझते हैं माताएं भी, आठ रतन, वो ज्ञान सागर बन जाते हैं। बाकी नंबर वार, सो भी नंबर वार, लेकिन आठ बिल्कुल जो ज्ञान शिव बाबा में है वही उनमें। और ज्ञान कहाँ है? ये मुरलियों में, ज्ञान मुरलियों में है, उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। परसों की मुरली में बहुत गहरी बात आई थी, यदि तुम्हारी आत्मिक दृष्टि हो तो तुम्हारे शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। अभी की मुरली 25 तारीख सवेरे की, 27 है ना, दो दिन पहले। यदि तुम्हारी आत्मिक दृष्टि पक्की हो तो शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। यूज कर सकते हैं आप इसे अपने परिवारों में, किसी का पति उसको साथ नहीं देता, वो भी शत्रुता ही है ना, वैसे शत्रु नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा भी करते हैं शत्रु बन जाते हैं, आत्मिक दृष्टि रख लो उनके लिए, ये बहुत अच्छी आत्मा है, और परिवर्तन देखो, बहुत सुंदर परिवर्तन। कोई आपका भाई, कोई पड़ोसी, कोई व्यापार में साथी आपको धोखा दे के दुश्मनी कर रहा है, उसके प्रति आत्मिक दृष्टि रखो, मित्र बन जाएंगे। तो ऐसी गुह्य बातें बाबा की मुरलियों में सब आती हैं, उन सब को जान लेना, केवल डायरी में लिखने वाली बात नहीं, उनकी स्मृति में रहना, उससे अपनी स्थिति को अचल अडोल बना लेना, यह है ज्ञान सागर बन जाना। जैसे मैंने शुरू में प्रश्न पूछा था, आधे भाई बहने आए थे, बाबा की मुरली में रोज आता है, तुम्हें घर चलना है, मैं लेने आया हूँ। भिन्न भिन्न तरह से बाबा बोलता है, कभी बोला तुम न भी चलना चाहो मैं मार पीट के भी ले जाऊंगा, तुम्हारे शरीरों को आग लगाकर तुम्हें पावन बनाकर ले जाऊंगा। तो क्या हमें ये फीलिंग है कि जाने का समय आ गया है? सब अपने से पूछेंगे, या हम अपने काम धंधों में ग्रस्त, घर परिवार में, बाल बच्चों में इतने बिजी हो गए हैं कि बाबा ने कहा घर जाना, हमने भी कहा घर जाना, पूरा हो गया काम, इसके आगे कुछ नहीं। क्या सचमुच हमें फीलिंग है सब कुछ छोड़कर घर जाना है और सब कुछ लेकर? चलो भाई लाल लाइट कर लो, बाकी बात बाद में। ट्रैफिक कंट्रोल का समय हुआ। छोटा सा सुंदर अनुभव सुना देता हूँ। कल एक कन्या का फोन आया, मैं बीबीए सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, कुछ याद नहीं होता, ऐसे फोन बहुत आते हैं आजकल। मैंने उसे छोटी सी बात कही कि अभी मैं मास्टर सर शक्तिवान हूँ, अभी लिखो 108 बार, सवेरे लिखना, कल कल शाम को लिखना। तीन बार उसने लिखा और आज शाम को फोन किया, भाई जी पढ़ाई में बहुत मन लग रहा है, अब मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, सब याद हो गई हैं मुझे। मैं सोचा इसका भाग्य बड़ा अच्छा है। मैंने कहा तुम्हारे भाग्य की भी बात है और तुम्हारी लगन की भी बात है। आजकल मन को विचलित करने वाली बातें बहुत आ रही हैं। अब उसके पास कोई कारण नहीं था। मैंने पूछा फोन पे बहुत रहती हो क्या? बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स बहुत बनाए हैं? कोई नहीं है। मैंने कहा क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मन उखड़ गया है, न पढ़ूं। और एक ही दिन में इतना बड़ा परिवर्तन, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने बाबा को थैंक्स दिया, क्योंकि फाइनली काम तो ऊपर से ही होता है ना, नीचे वाले तो थोड़ा बहुत करते हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव है जिसको मन ऐसा हो जाए, क्योंकि ये समस्या बढ़ रही है और दिनों दिन बढ़ेगी। मन खाली खाली सा, उदास उदास सा, खुशी नहीं, कुछ पढ़ने को मन नहीं, खाने को मन नहीं। वो 108 बार सवेरे उठते और रात को लिखे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। रोज इसके अच्छे अनुभव आते हैं हमारे पास। किसी को 21 दिन में बहुत कुछ ठीक हो जाता है, कोई एक हफ्ते में ही हो जाते हैं, लेकिन जिसके पुण्य कर्म कम हैं उनको देर लगती। ऐसा ही एक फोन और था आज, उसका कुछ होता ही नहीं, लेकिन जिसका विकर्मों का खाता तेज है उनको पता क्या होता है। हम उन्हें कह रहे थोड़ा आश्रम में जाके ज्ञान योग भी कर लो भाई थोड़ा थोड़ा, कहा भाई उसके लिए टाइम नहीं है। चाहते हैं सब कुछ अच्छा हो जाए पर बाबा के लिए टाइम नहीं है, ये गलत बात है ना। जीवन मिलता है उससे, ज्ञान ले लिया उन्हें पता है। मैंने कहा अच्छा चल बाबा के रूम में 15 मिनट जाके तो बैठा करो। नहीं बहुत दूर है। दूर कितना होगा, बाइक से 10 मिनट लग जाएंगे, एक्टिवा से कितना दूर है। तो मनुष्य को कुछ करने की भी तो इच्छा होनी चाहिए या नहीं? ऐसे लोग भी आपको बहुत मिलेंगे जो कहेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, तुम ही कर दो। डॉक्टर को कहेंगे हमारी बदली दवाई भी तुम ही खा लो, ठीक हम हो जाएं, चलेगा काम? तो हमें बाबा से सब कुछ लेना है। ज्ञान रतन जिसके पास बहुत ज्यादा होंगे उसे जन्म जन्म स्थूल धन बहुत मिलेगा। ज्ञान धन जो बहुत दान करेंगे, ज्ञान का जो बहुत चिंतन करेंगे, उनको स्थूल धन की कमी नहीं होगी। 84 जन्मों की गारंटी है ये। शक्तियां जिन्होंने बहुत जमा की होंगी वो जन्म जन्म निर्भय रहेंगे और अनेक जन्म उनके सिर पे ता जाएगा, सत्ता मिलेगी उन्हें। गुणों का खजाना जिसने भरा होगा उनको संबंधों का सुख बहुत मिलेगा। संबंधों का सुख किसको मिलता है आजकल भी? जिस जो गुणवान है उनको ही मिलता है ना, जो क्रोधी हैं उनसे सब दूर भागते हैं, जो अभिमान ज्यादा रखते हैं उनके पास भी कोई नहीं आता, जो स्वार्थी बहुत हैं उनको भी सब छोड़ जाते हैं, जो सहनशील हैं, बहुत संतुष्ट हैं, बहुत स्वीट हैं, नम्रचित्त हैं, दूसरों को मदद करते हैं, सम्मान करते हैं, नए सद्गुण है ना, आज था ना ये भी जो आगे बढ़ रहे हैं, दैवी गुण उनमें बढ़ते जाएंगे, हल्के होते जाएंगे। तो जिन्होंने गुणों का खजाना यहाँ बहुत अपने में धारण कर लिया उनको जन्म जन्म संबंधों में सुख मिलेगा। एक गहरी बात भी बाबा ने कही है, वो तो आपने शायद ही सुनी हो, जो यहाँ परमात्म प्यार में मगन रहते हैं उन्हें जन्म जन्म संबंधों में प्यार मिलता है। कुछ देवियों के मंदिरों में पुजारी नहीं होते, हंसी की बात है ये, होते ही नहीं। देखे होंगे आपने हनुमान जी का मंदिर खड़ा है, हनुमान जी खड़े हैं, बेचारे को नहलाने वाला भी कोई नहीं है, धूल मिट्टी जम गई है। तो बाबा ने कहा जिन्होंने अपने साथियों को प्यार नहीं दिया उनके मंदिरों में पुजारी नहीं होंगे। अब देख लो आपको पुजारी रखना है या अकेले ठीक है। तो प्यार देना सबको, जिन्होंने दुआओं का खजाना बहुत जमा किया है उनको सबका सहयोग साथ प्यार मिलता रहेगा। सब पसंद करते हैं ना जो शुभ भावना रखते हैं, सहयोग करते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, जिन्होंने पुण्य कर्म बहुत किए हैं। सबसे बड़ी बात है आजकल बहुत बड़ा खजाना है पुण्य कर्मों का, क्योंकि लोग पाप बहुत कर रहे हैं और उनको पता नहीं कि वो पाप कर रहे हैं। पुण्यों का खजाना जिसने बहुत जमा किया है वो विनाश काल में भी बहुत सुखी रहेंगे और चारों युग पुण्य कर्म करते रहेंगे। पाप से डर लगेगा उन्हें, पाप से बचेंगे, उन्हें पाप का पता होगा ये पाप है। आजकल लोग बहुत शराब पीते हैं, मुर्गे तो बहुत खाते हैं, अंडे खाने को तो कुछ समझते ही नहीं, ये सब पाप है या नहीं? सब पाप है। जिनसे हमारी मनोस्थिति बिगड़ती है, जिनसे हमारे स्वभाव उग्र होते हैं, वो सब पाप कर्मों में गिने जाते हैं। शराब पीने से तो आजकल किडनी और लीवर फेल हो रहे हैं, बहुत बड़ा प्रैक्टिकल नुकसान हो रहा है ये। और एक चीज और, आजकल डॉक्टर बोलने लगे हैं रिफाइंड तेल जो खाने में डालते हैं ना आप सब, उससे भी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। इसलिए माताओं का काम है अपने घरों में थोड़ा चेंज कर लो, सरसों के तेल में भोजन बनाना शुरू करो। और मैं आपको एक विधि बता देता हूं ताकि सरसों के तेल का जो तीखापन है ना, कड़वापन सा, वो न लगे। जब वो गर्म हो जाए ना फुल सरसों का तेल, जब जीरा डालते हैं उससे पहले नमक पानी थोड़ा सा डाल दो उसमें, वो रिफाइन हो गया और वो बहुत अच्छी चीज रहेगी। क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस ये बहुत बता रही है कि एक तो भोजन में जो कीटनाशक फसलों में डाले जाते हैं उनका प्रभाव, और एक ये रिफाइन ऑयल, इनका प्रभाव अनेक बीमारियों को जन्म दे रहा है। पहले मनुष्य के शरीर थोड़े स्ट्रांग थे तो ये चीजें ज्यादा प्रभाव नहीं डालती थी, आजकल तेजी से प्रभाव डाल रही। माताएं ध्यान दें, सब्जियों को गर्म पानी, अच्छे गर्म पानी में, उबलते जैसे पानी में डाल के रखें कुछ देर, तो उनका बैड इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो हमें बाबा से सब कुछ लेना है, पवित्रता का खजाना बहुत बड़ी चीज है। संगम युग का जैसे योग बल है, वैसे ही दूसरा सर्वश्रेष्ठ पवित्रता का बल है। जिसके पास ये दो बल होंगे वो महान कार्य करेंगे विनाश काल में, वो आत्माओं को राहत देंगे। और पवित्रता का बल किसके पास होगा मैं थोड़े में बता देता हूं, अब क्लास पूरी करेंगे। ब्रह्मचर्य अपना लिया, अपवित्र बन गए, योग लगने लगा, बल बढ़ने लगा, लेकिन अगर ईर्ष्या द्वेष में है, अगर परचिंतन और तेरे मेरे में रहते हैं, अगर नफरत और घृणा भाव मन में है, तो ये सब बल खत्म होता रहता है। तो पवित्र भी होंगे, सेवा भी करेंगे, बाबा से योग भी लगाएंगे, लेकिन इन सब के कारण पवित्रता का बल प्राप्त नहीं होगा। पवित्रता एक साधारण पवित्रता रह जाती है। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे भी पवित्र हैं, लेकिन उनमें पवित्रता का बल नहीं है। हमें धारण करना है पवित्रता का बल। तो ज्ञान को अपना विजडम बनाना है, विवेक, और पवित्रता को अपना बल बनाना है। तो इससे आने वाले समय में हम संसार के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। जो भाई बहने भट्टी में आए हैं उनका स्वागत है, और आप सभी, मैं एक ही बात कहूंगा, मधुबन में रहने का मौका मिला ये भी सुंदर भाग्य है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, सोने के लिए नहीं कि ठंडी ठंडी हवा है, नींद भी अच्छी आती है, आती तो है वो भी ठीक है, लेकिन योग भी इसमें बहुत अच्छा लगेगा। शीतल माहौल में मन भी शीतल हो जाता है, योग बहुत अच्छा लगता है। और मैं आप सबको कहूंगा कोई भी 3 पॉइंट का प्रोग्राम अपने भविष्य जीवन के लिए बना के जाना, जो लिखना जानते हैं वो लिख के जाना, ये तीन अभ्यास करेंगे अब से, ये तीन हमारी धारणाएं होंगी। और जो लिखना नहीं जानती, कोई माताएं ज्यादा बुजुर्ग भी हैं, वो ऐसा मन में ये तीन पॉइंट, जैसे भाई हम अमृत वेला कभी मिस नहीं करेंगे। अब परचिंतन हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है, परचिंतन पूरा हुआ, ऐसी धारणाएं। अब हम सबको सुख देंगे, आज से हमारा क्रोध शांत करेंगे, आज से मैंपन का त्याग करेंगे। तीन बातें, ज्यादा नहीं, सारी तो नहीं की जा सकती, जो भी क्लासेज हो आपको जो कुछ अच्छा लगे उससे तीन बातों का एक सुंदर प्लान बनाना अपने जीवन के लिए, तो सदा के लिए भट्टी यादगार बन जाएगी। ओम शांति। अब घर जाने की प्रैक्टिस करेंगे, कैसे? बाबा आ गया है और मैं आत्मा देह छोड़कर बाबा के साथ परम धाम जा रही हूँ और फिर उसके पास बैठ गई हूँ।